आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है अंतरिक्ष खोज। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका पार्ट टू कराया था और उसके पहले मैंने आपको इसका पार्ट वन कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष की खोज हमारे प्राचीन समय में कैसे होती आ रही है। मैंने आपको मिस्र के पिरामिड बताए थे जो कि पत्थर को काट के बनाए जाते हैं। वैसे ही मैंने आपको इसकी कुछ डेट्स याद कराई थी। मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष की खोज का जो इतिहास रहा है उसमें भारत के कौन कौन से खगोलविद रहे हैं, यूरोप में यूनान के कौन से खगोलविद थे। मैंने आपको तीन नाम याद कराए थे, आर्यभट्ट, इरास्टोस्थनेस, भास्कराचार्य द्वितीय। उसके बाद मैंने आपको अंतरिक्ष जानकारी के साधन नाम का एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको दूरबीन के बारे में बताया था। दूरबीन पर मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी, दूरबीन का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, कब किया इत्यादि। फिर मैंने आपको वैज्ञानिकों को दूरबीन कैसे जरूरी है उसके बारे में बताया था। बच्चों, इसके बाद मैंने आपको गैलीलियो गैली के बारे में बताया था। मैंने आपको अपने देश की सबसे बड़ी टेलीस्कोप के बारे में बताया था, जिसका नाम है मास्ट। उसका फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। फिर बच्चों, मैंने आपको दक्षिण भारत के कावलूर नामक जिले में एक स्थान बताया था जिसका नाम है वेणु बापू दूरबीन, जिसकी स्थापना के बारे में बताया था और कैसे 1990 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना अंतरिक्ष में हुई। उसके बाद मैंने आपसे सब टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है वेधशाला। वेधशाला में मैंने आपको बताया था कि कैसे पुराने समय में पाटलिपुत्र, नालंदा और भी कई सारी ऐसी प्लेसेस जो थी वो कैसे कंट्रीब्यूट करती थी अंतरिक्ष के बारे में जानने में। वैसे ही मैंने आपको एक राजा का नाम बताया था, सवाई जय सिंह, जिन्होंने भारत में चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान की मदद से वेधशाला का निर्माण कराया। कहाँ पर? दिल्ली के जंतर मंतर में, फिर एक जयपुर में भी है और वैसा ही एक उज्जैन में है। बच्चों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं और वो पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाते हैं। मैंने आपसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जिक्र किया था। वैसे ही मैंने आपको एक टर्म बताया था, पलायन वेग, यानी कि वो स्पीड जिसकी स्पीड से भेजने पर कोई भी यान हमारे गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का उसको क्रॉस कर जाता है। फिर मैंने आपको विश्व के और भारत के कुछ अंतरिक्ष यात्री के नाम बताए थे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग और फिर कल्पना चावला, राकेश शर्मा, अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स जो कि भारत में पैदा हुई थी। फिर बच्चों, मैंने आपसे दो एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी, उम्मीद है आपने वो एक्टिविटीज़ की होंगी और आपने निबंध को सुनाया होगा। अब हम आज कंटिन्यू करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो नाम का टॉपिक। पहले मैं इसको रीड करूंगी। इसमें लिखा है, हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें प्रमुख के नाम है भास्कर, एप्पल, एनसेट, रोहिणी, आईआरएस, एड्यूसेट, हीमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, जी सेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। इन उपग्रहों की सहायता से दूर संचार प्रसारण, मौसम, जलवायु और सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधित पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियां और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमें इसरो के बारे में बताया गया है। आपने इसरो का नाम तो कई बार सुना होगा अगर आप न्यूज़ देखते होंगे। जी हाँ, ये एक संगठन है जो कि अंतरिक्ष की पढ़ाई के लिए यान को अंतरिक्ष में भेजता है, कई सारी प्रयोग करता है, जैसे आपके स्कूल में लैबोरेटरीज होती हैं साइंस के सब्जेक्ट में, वैसे ही अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमारे देश में इसरो की स्थापना हुई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। जो इसरो के नाम पर मुझे एक चुटकुला याद आया, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो एक बार मैडम इसरो के बारे में एक क्लास में पढ़ा रही थी, तो पिंकी ने पूछा, पता नहीं इसरो का नाम क्या है, इसरो कहाँ होता होगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता। फिर एक उसके दोस्त जिसका नाम गंपू था, गंपू ने कहा कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तो बचपन से ही इसरो में हैं, स्कूल से हमारी मैडम कहती थी। तो लड़की ने पूछा, कैसे? लड़के ने जवाब दिया, मैडम कहती थी लड़कियां उस रो में बैठेंगी और तुम लड़कों इस रो में बैठोगे। तो यानी कि हम इसरो में बैठते हुए आ रहे हैं, यानी कि हम इसरो के सदस्य हैं। लड़की को जोर से हंसी आई और उसने उसको कहा कि अरे बुद्धू, तुम जिस रो की बात कर रहे हो उसका संबंध तो क्लास में बैठने के अरेंजमेंट से है कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और लड़के इस रो में बैठेंगे। इसका हमारी इसरो से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो इसरो की बात मैडम आज कर रही थी वो इसरो एक संगठन है जहां पर वैज्ञानिक काम करते हैं, और तुम्हारा वहां होना थोड़ा कठिन है क्योंकि तुम अभी वैज्ञानिक नहीं बने हो। फिर उन्होंने जब पता लगाया इसरो के बारे में, तो उन्हें मालूम हुआ कि इसरो की स्थापना करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का था, और इन्हीं के नेतृत्व में हमारे देश के परमाणु ऊर्जा विभाग, जो कि परमाणु यानी कि एटम बम्स और न्यूक्लियर वेपन्स, इन सभी चीजों से डील करता है, उसने इसरो की स्थापना की। जो इसरो की तरह ही विश्व में सभी देशों के अपने अपने संस्थान हैं, जो कि अंतरिक्ष के बारे में पता लगाने के लिए एक एक संगठन का निर्माण करते हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं नासा का। नासा के बारे में आपने भी सुना होगा, अमेरिका का एक संगठन है जो कि अंतरिक्ष में अपने यान भेजता है। वैसे ही इसरो इंडिया का एक संगठन है जो कि केवल इंडिया के बारे में पता लगाता है, और इसरो के द्वारा जो ये चीजें पता लगाई जाती हैं उस पे इंडिया का एक कॉपीराइट होता है, यानी कि उस पे लिखा जाता है कि ये सारी चीजें इंडिया के द्वारा सर्च की गई हैं, पता लगाई गई हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, इसरो का जो स्थापना हुआ था उसमें हेल्प की थी वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने, और तब से लेकर आज तक जो विज्ञान की पढ़ाई है, अंतरिक्ष की पढ़ाई है, उसमें डेवलपमेंट ही आया है, और इसरो का सबसे बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर बच्चों, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड की, देखिए किसी चीज़ को बना देना ये तो आसान है, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करके और उस चीज़ में डेवलपमेंट करवाना ये थोड़ा कठिन है। वैसे ही इसरो की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है उसके लिए हम याद करते हैं विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए और इसी की मदद से इसरो ने बहुत नाम कमाया। जो इसी पैराग्राफ में फिर जरा इतिहास के बारे में बताया है कि भारत में जो सबसे पहला यान था, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एरिया है उसके अंडर में जिसको स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, उसका नाम है आर्यभट्ट। और उसको 1975 में पहले का जो सोवियत संघ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि उड़ाया गया था, आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। उसी के साथ भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया, यानी कि अभी तक पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एरिया था वहां पर जो भी कृत्रिम उपग्रह की स्थापना हुई थी केवल 6 देशों ने किया था और भारत का नंबर 6 था। और इसका काम था पृथ्वी के आसपास की चीजों का, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना, उसके बारे में हमें जानकारी देना। और 1975 तक पृथ्वी पर काफी सारे शोध हो चुके थे और भारत ने भी कई सारे उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया था, जिनमें से इम्पॉर्टेंट जो नेम्स हैं उनका नाम मैं आपको याद कराऊंगी, भास्कर, एप्पल, एनसेट, रोहिणी, IRS, एड्यूसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, जी सेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। और बच्चों इन्हीं सारे उपग्रहों की वजह से आज जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, फोन का, रेडियो का, इन सब का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन्हीं सब उपग्रहों की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये हमारी मदद करते हैं दूर संचार में, यानी कि फोन जब हम मिलाते हैं तो आप घर बैठे कहीं और फोन कर लेते हैं, वो इन्हीं उपग्रहों की दी हुई जानकारी की मदद से। ये हमारी मदद करते हैं प्रसारण में, यानी कि जो टीवी पर जो भी चैनल आता है उन सभी में। वैसे ही मौसम, जलवायु और सुदूर संवेदन, और फिर जो हमें मैप दिखता है बच्चों, यानी कि जिसको हम GPS कह सकते हैं, कई बच्चे आजकल पबजी खेलते हैं तो उसमें जो GPS का यूज होता है वो सब ये मानचित्रण की वजह से मुमकिन हो पाया है। सूखा जब पड़ता है, बाढ़ आता है, तूफान आता है और हमें पहले से जिसकी जानकारी चाहिए होती है, यानी कि हमारी सेफ्टी के लिए, ये सभी गतिविधियों की जो जानकारी प्रोवाइड करता है वो ये सारे उपग्रह प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये उपग्रह सार्वजनिक और राष्ट्र उपयोगी कार्यों को समाप्त करने में, यानी कि सुचारू ढंग से चलाने में, बहुत बढ़िया तरीके से चलाने में ये उपग्रह हमारी मदद करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक लिखता है मंगल अभियान। ये एक सब टॉपिक है, इसके अंदर लिखा है मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत में मंगल यान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी प्रक्षेपित किया गया। बच्चों इससे पहले कि मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझाऊं, आप इसी पैराग्राफ के नीचे दी हुई दो चित्र को ध्यान से देखिए। पहला चित्र रॉकेट को प्लेस किया गया है, उस पे लिखा है प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान। उसके बगल में लिखा है एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण यानी कि प्रक्षेपण हो चुका है। दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों पेज नंबर 22 पर दिया हुआ सब टॉपिक जिसका नाम है मंगल अभियान, उसमें हमें बताया गया है मंगल ग्रह की जानकारियों के बारे में और मंगलयान के बारे में। तो जैसा कि मैंने इसकी रीडिंग कर दी है, इसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह पर जो भी जानकारियां हासिल हुई हैं उसको भारत ने जो एक नाम दिया है उस अंतरिक्ष यान को और उस मिशन को, उसको हम इंग्लिश में मार्स मिशन कहते हैं, हिंदी में उसको हम मंगलयान कहते हैं। यानी अंतरिक्ष यान का नाम जो मंगल पर गया क्या था? मंगलयान। बच्चों कभी आपने सोचा है कि हमें आखिर मंगल पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बच्चों ऐसा इमेजिन करिए कि कभी ये दुनिया खत्म हो गई, कभी पृथ्वी पर पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा, तो साइंटिस्ट को यही एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि क्या पता हमारी पृथ्वी को छोड़ करके और भी ऐसी कोई ग्रह हो और या फिर उपग्रह हो जहाँ पर जीवन जो है मौजूद है। इसी सर्च में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अंतरिक्ष में यान को भेजते हैं और जो मिशन्स जिस जिस ग्रह पर जाते हैं उसको उसका नाम दिया जाता है। यानी कि अगर वो मंगल ग्रह पर गया है तो उसे मंगलयान बोला जाएगा, अगर हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर गया है तो हम उसे चंद्रयान के नाम से जानते हैं। वैसे ही बच्चों ये मंगलयान को हमने भेजा कब था? इसको नवंबर 2013 में भेजा गया था। इंडिया के साउथ स्टेट जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, वहीं पर एक स्पेस सेंटर स्थापित किया गया है, नाम है श्री हरि कोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये श्री हरि कोटा जगह के नाम पर स्थित है। और बच्चों इस यान ने लगभग 11 मंथ्स लगाए और तब जाकर के सितंबर 2014 में ये अंतरिक्ष यान मंगल के कक्षा में सक्सेसफुली एंटर कर पाया। और ये करने वाला हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड का केवल एक ही ऐसा देश था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पाई हो। और बच्चों इसी प्रकार हमने चंद्रमा के अध्ययन के लिए भी कई सारे अंतरिक्ष यान भेजे। इसमें सबसे पहले हमने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नाम के अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा था, वहां की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि वहां पे कोई खनिज मौजूद है या फिर जल मौजूद है या फिर एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी वहां पॉसिबल हो सकती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अपने यानों को मंगल पर या फिर चंद्रमा पर क्यों भेजते हैं। तो इस पैराग्राफ में केवल इतना ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 22 पर, उसका नाम है पहली अंतरिक्ष वेधशाला। इसमें लिखा हुआ है मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की हैं। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि मंगलयान पे जो सक्सेस हमें मिली थी उसके बाद भारत की काउंटिंग उन देशों में होने लगी जिनकी खुद की लैबोरेटरीज या फिर स्पेस सेंटर हमारे अंतरिक्ष में है। और इसरो ने सबसे पहले श्री हरिकोटा से, जो मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश में है, वहां से अक्टूबर 2015 में सबसे फर्स्ट अंतरिक्ष वेधशाला यानी लैबोरेटरी जिसका नाम था एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया था यानी कि भेजा गया था। और इसी से हमें ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के पढ़ाई करने में, उसके बारे में जानने में बहुत मदद मिलती है। भारत से पहले ऐसा करने वाले और भी देश थे विश्व में, उनमें से काउंटिंग होती है अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ की।
यूरोपीय संघ यानी कि यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं वो यूरोप में आते हैं, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम्स, स्वीडन, नीदरलैंड, रोमानिया, ये सारे देश। आप इन सभी देशों को एक बार मैप पर देखिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको इन देशों का लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है। हम चैप्टर को एंड करने के कगार पर हैं। इसमें लास्ट में तीन एक्टिविटीज दी हुई हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहली एक्टिविटी कहती है कृत्रिम उपग्रह से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। बच्चों, मैंने आपको कृत्रिम उपग्रह के बारे में बताया है, ये क्या होते हैं। ये मानव द्वारा उपग्रह बनाए जाते हैं जिनको हम पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल एरिया होता है उसके अंदर ही स्थापित करते हैं, ताकि हमें मॉनसून के बारे में, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, इन सब जो चीजें होती है इनमें हमें मदद मिल सके। तो आप वैसे ही कृत्रिम उपग्रह की जो बाकी सारे फायदे हैं अपने टीचर्स से, भाई बहन से या अपने माता पिता से डिस्कस करके लिखिएगा। सेकेंड एक्टिविटी कहती है भारत ने अब तक कौन कौन से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं, इनमें से किन्हीं दो पर आप जानकारी एकत्र कीजिए। तीसरी एक्टिविटी है भास्कराचार्य द्वितीय, टॉलेमी या आर्यभट्ट की जीवनी पर जानकारी एकत्र कीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भास्कराचार्य द्वितीय और आर्यभट्ट ये दोनों भारत के बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, टॉलेमी यूरोप के बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। तो आप इंटरनेट की हेल्प से या अपने टीचर्स की हेल्प से या फिर किसी और की हेल्प से आप इनके बारे में इनकी जीवनी पढ़िए। जीवनी बच्चों होती है जिनके जीवन पर लिखा जाता है, पढ़ करके जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो पेज नंबर 23 पर आपकी ग्लॉसरी दी हुई है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मिस्र के पिरामिड। इसका मतलब प्राचीन समय में मिस्र के पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पिरामिड को हम कैसे बनाते थे, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर और इनको शेप दिया करते थे। इसकी ऊंचाई 454 फीट हुआ करती थी और इससे हम तारों की जो स्थिति, उनकी जो मूवमेंट हुआ करती थी, इसका पता लगाया करते थे। दूसरा शब्द है दूरबीन। दूरबीन का मतलब है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र, क्योंकि दूरबीन हमें चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तीसरा शब्द है वेधशाला। वेधशाला का मतलब खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारियां एकत्र करने का स्थान। वेधशाला को हम हिंदी में लेबोरेटरी कहते हैं, और जैसा कि आपके स्कूल में लेबोरेटरीज होंगी उसमें हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, वैसे ही खगोल पिंड की जो निरीक्षण होती हैं उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं, तो उसका प्लेस भी ये वेधशाला होती है। चौथा शब्द है कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह। पांचवा शब्द है एक मील। बच्चों, एक मील में 1.6 किलोमीटर आता है। तो हमारी ग्लॉसरी यहीं समाप्त होती है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सही विकल्प को चुनिए, यानी कि एमसीक्यू टाइप। इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन क 1960 ईस्वी में, ऑप्शन ख 1975 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1947 ईस्वी में, ऑप्शन घ 1985 ईस्वी में। तो बच्चों, चलिए पीछे चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पेज नंबर 21 पर दिया गया सब टॉपिक इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में, इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तो बच्चों, आपको आपका जवाब मिल गया। कि इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, और उसको 1975 में यानी 1975 में सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सही जवाब है ऑप्शन ख, यानी 1975। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेदशाला स्थित है, ऑप्शन क उदयपुर, ऑप्शन ख कोटा, ऑप्शन ग जोधपुर, ऑप्शन घ जयपुर। तो बच्चों इसका जवाब मैंने आपको टॉपिक वेदशाला में दिया था। जी हाँ, वेदशाला में हमने एक राजा के बारे में पढ़ा था, सवाई जय सिंह। तो आप आइए पेज नंबर 19 पर, और इसमें लिखा हुआ ये लाइन फिर से दोहराइए। सवाई जय सिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेदशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर में प्रारंभ किया। उन्होंने 1724 में पहली वेदशाला दिल्ली में बनवाई, उसके बाद 1734 यानी 10 साल के बाद दूसरी वेदशाला जयपुर में बनवाई। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि राजस्थान का प्राचीन जंतर मंतर वेदशाला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ग यानी जयपुर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसका पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट भारत के महान डैश थे। तो बच्चों इसमें आपको फिल करना है कि आर्यभट्ट भारत के महान क्या थे। तो पेज नंबर 17 पर मैंने आपसे डिस्कस किया था अंतरिक्ष खोज के इतिहास में आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी स्थिर यानी एक जगह रुकी हुई नहीं है। ठीक है, तो आपको आपका जवाब मिल गया, आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। इसका क्वेश्चन कहता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय डैश को है। तो बच्चों जब मैं आपसे इसरो के बारे में डिस्कस कर रही थी, तो इसके सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही लिखा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है, और ये पेज नंबर 21 पर है। आप देखिए आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। तो आप उस डैश में विक्रम साराभाई को फिल करिए। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी पूछता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए डैश किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया था पेज नंबर 19 में, एक येलो कलर का कॉलम दिया था, उसमें पलायन वेग के बारे में लिखा था, और इसमें लिखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम पलायन वेग या एस्केप स्पीड से जानते हैं। तो आपको स का जवाब मिल गया, भारत के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 डैश में फिल करिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। इसी का द पार्ट पूछता है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम डैश रखा गया था। तो बच्चों जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया। तो द का भी जवाब क्या होगा, आर्यभट्ट, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था टॉपिक जिसका नाम था अंतरिक्ष खोज का इतिहास। इसमें मैंने आपको बताया था भारत के 2 मेन खगोल शास्त्रीय, इसमें से पहले थे आर्यभट्ट जो कि भारत के महान खगोलविद थे, और इन्होंने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थिर नहीं है, और ये बात उन्होंने ईसा पूर्व 5वीं सदी में बता दी थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय और अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी का सर्कमफ्रेंस यानी परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आज के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि यानी कि 24,901 मील के लगभग बराबर है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो आज भी अटल सत्य है। और इसी में दूसरे भारत के खगोलविद थे भास्कर आचार्य द्वितीय। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 26 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो बच्चों, दो मेन खगोलविद थे, आर्यभट्ट और भास्कर आचार्य द्वितीय। तो इनका जो विवरण है वो आपको पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो पूछता है, प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई। तो बच्चों, इसका जो जिक्र किया था मैंने आपसे, वो सबसे पहले यानी कि पेज नंबर 16 में किया था, और इसमें टॉपिक था खगोल की प्राचीन विरासत। इसमें लिखा था, खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ होगा, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है, यानी ये टॉपिक अभी भी डिबेटेबल है। फिर भी माना जाता है कि इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्ष पहले ही स्थापित हुआ था, और इन्हीं सारे प्रमाणों के आधार पर पिरामिडों का जो निर्माण हुआ था वो तारों की दिशा और उनकी गति को पता लगाने में मदद करता था। इसका एग्जाम्पल है गीजा का महान पिरामिड, जो ध्रुव तारे के सीधाई पर स्थित है। इसी प्रकार चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं सदी से आ की गई है। और बच्चों, संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था, और चीन में ही ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ही विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका बनाई गई थी। और पश्चिमी सभ्यता में यूरोप के यूनान से अंतरिक्ष का विज्ञान शुरू हुआ था। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये पूछता है, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब और क्यों हुआ। तो बच्चों, इसका डिस्कशन मैंने आपसे पहले डिटेल में किया हुआ है, फिर भी पेज नंबर 16 पर दिया गया पैराग्राफ में फिर से रीड करूंगी। मिस्र के पिरामिडों की स्थापना ईसा पूर्व 2500 वर्ष पहले हुई थी, और अभी तक के जो प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। गीजा का महान पिरामिड ध्रुव तारे के सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। आप इसको अपने जवाब के तौर पर लिख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप पेज नंबर 16 पर जाइए। आगे का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान की चर्चा कीजिए। तो इसको देखने के लिए पेज नंबर 17 पर जा सकते हैं, जहां लिखा है कि आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे और इनकी मान्यताएं निम्नलिखित थीं। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, दूसरा पृथ्वी स्थिर नहीं है, और ये बात इन्होंने ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बताई थी। तीसरा, इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। चौथा, उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। पांचवा, उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। इसीलिए आर्यभट्ट ने 5 मान्यताएं दी थी। आप इसको याद कर लीजिए। इसको देखने के लिए पेज नंबर
17 पर जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, दूरबीन क्या है और इसके लाभ बताइए। इसको जानने के लिए भी आपको पेज नंबर 17 टॉपिक दूरबीन को देखना होगा, जिसमें लिखा गया है कि दूरबीन आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र है। इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड नीदरलैंड के हेन्स लिपर्सी ने किया था, किंतु आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 में किया था। इतना आपके जवाब के लिए काफी है, तो आप इसको अपने जवाब में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यूनान के किस गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की परिधि का पहली बार सही आकलन किया था। बच्चों, इसका सही जवाब जानने के लिए भी आपको पेज नंबर 17 टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष खोज का इतिहास, और जो तीन चित्र दिए हुए हैं आर्यभट्ट, इराटोस्थनेस, भास्कर आचार्य द्वितीय, इसके नीचे दिया गया पैराग्राफ की चौथी लाइन जिसमें लिखा है कि पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया था, और ये यूनान के एक दार्शनिक थे। इनके साथ साथ और भी प्रमुख यूनानी दार्शनिक जिनके नाम है प्लेटो, अरस्तु और टॉलमी, आप इस बात को याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों एवं उनके कार्यों का विवरण दीजिए। तो बच्चों, पेज नंबर 20 और 21 में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यात्री। इसमें लिखा है कि 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इसमें पहला नाम है यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष यान वोस्तोक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। दूसरा नाम है अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग का, जो विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। के बाद इसमें राकेश शर्मा के बारे में लिखा है, जो 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। ये सोयुज T-11 यान के दो अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, बल्कि उन्होंने सोयुज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। उसके बाद हमने कल्पना चावला का नाम पढ़ा था, जिनका जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था 1961 में। कल्पना चावला एक सौध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी, जिनकी मृत्यु कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय 2003 को हुई दुर्घटना में हुई थी। उसके बाद हमने भारत मूल की निवासी अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा, जो कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। हमने अभी तक जिनके बारे में पढ़ा वो मैं रिपीट करूंगी, सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग और यूरी गागरिन, ये सभी अंतरिक्ष यात्री थे जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक था। और इसी के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 ग्लोब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।